शौर्य गाथा।
श्रोतो, कार्यक्रम शौर्य गाथा की इस कड़ी में इस्लामिक गणतंत्र ईरान की सैनिक क्षमता व ईरान और उसकी इस्लामिक क्रांति पर अतिक्रमण के मुकाबले में ईरानी जनता प्रतिरोध के आंकलन में इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन की गलती की समीक्षा करेंगे। मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
पिछले कार्यक्रम में हमने ईरान के खुर्रम शहर पर इराक के बासी शासन की सेना के अतिक्रमण के मुकाबले में इस शहर की रक्षा में शहर की महिलाओं और बेटियों की वीरता का वर्णन किया था। वर्णन के दौरान हमने सैयदा जहरा हुसैनी नामी एक 17 वर्षीय लड़की की वीरता का उल्लेख किया, जिसकी वीरता 8 वर्षीय पवित्र रक्षा साहित्य में अमर हो गई। सैयदा जहरा हुसैनी के खुर्रम शहर की रक्षा की यादों का सैयद आज़म हुसैनी ने द किताब नाम में उल्लेख किया है। कुर्दी भाषा में दा का अर्थ माँ है। सैयदा जहरा हुसैनी का परिवार ईरानी था जो इराक़ के बसरा शहर में बस गया था, लेकिन उसे ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले इराक़ से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो खुर्रम शहर में बस गया। सैयदा जहरा हुसैनी के खुर्रम शहर की रक्षा करने वालों के प्रतिरोध के दिनों की वीरता व बलिदान की यादें एक अपराधी शासन के अतिक्रमण के मुकाबले में इस्लामिक क्रांति और अपने वतन की रक्षा के लिए ईरानी जनता के प्रतिरोध का एक छोटा सा पहलू है। खुजिस्तान की जनता का प्रतिरोध और इस प्रतिरोध के केंद्र खुर्रम शहर की जनता का प्रतिरोध था। जंग की शुरुआत के दिनों में ईरानी वायुसेना व नौसेना की कई कार्यवाही से इराकी सेना और खुद सद्दाम के अतिक्रमण को जारी रखने की ओर से हौसले का पस्त हो जाना। ईरान की नौसेना ने इराक के व्यापक हमले के सिर्फ कुछ दिनों के भीतर तेल के अल अमिया और अल बकर नामी दो प्लेटफार्म को हमला करके निष्क्रिय बना दिया था। इस तरह फारस की खाड़ी से इराक का तेल निर्यात 1988 में जंग खत्म होने तक प्रभावित रहा। ईरान की वायुसेना ने जंग शुरू होने के तुरंत बाद कमान 99 नामक अभियान में 140 लड़ाकू विमानों से इराक के संवेदनशील व रणनीतिक दृष्टि से अहम केंद्रों पर कार्यवाही की।
कमान 99 कार्रवाई में ईरानी वायुसेना की इराक के बासी शासन और उसके समर्थकों पर वरीयता पूरी तरह साबित हो गई। इस कार्रवाई में ईरान की वायुसेना के आधुनिक लड़ाकू विमान के चालकों ने यह साबित कर दिया कि वे अमरीकी सलाहकारों के बिना दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमान उड़ाने में सक्षम हैं, और उन्होंने एक विशाल हवाई कार्रवाई अंजाम दी। इस्लामी गणतंत्र ईरान के वायु व नौसेना की देश पर सद्दाम शासक के अतिक्रमण पर प्रतिक्रिया और शहरों व गांवों में सशस्त्र बल व जनता के प्रतिरोध ने दर्शा दिया कि सद्दाम शासन का इस्लामी गणतंत्र ईरान की सैन्य क्षमता के बारे में अंदाजा गलत था।
27 सितंबर 1980 को द गार्डियन अखबार ने इस बारे में लिखा, इराकी सशस्त्र बल के लिए पिछला हफ्ता अच्छा नहीं रहा, न तो उन्हें उल्लेखनीय और न ही मामूली सफलता मिली। इस बारे में जर्मन रेडियो ने अपने कार्यक्रम में कहा, इराक मौजूदा निरर्थक जंग में, जिसका लक्ष्य इमाम खुमैनी के शासन को गिराना था, किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सका। इस जंग से इराक की कल्पना के विपरीत ईरान की स्थिति बहुत मजबूत हुई है।
फाइनेंशियल टाइम्स ने 1 अक्टूबर 1980 को एक रिपोर्ट में लिखा, जिस चीज़ की ओर इराकी नेताओं का ध्यान नहीं गया वो ईरानी जनता की क्षमता और उसके अपनी क्रांति के प्रतीकों की रक्षा के लिए तैयारी थी, जिसके मन में एक धार्मिक व राजनीतिक आंदोलन का जोश भरा हुआ था। इराकी सेना का एक कमांडर इस देश की सेना की असफलता की समीक्षा के इस बात पर बल देते हुए कि इराकी सेना को ईरानी जनता के प्रतिरोध के संबंध में सही जानकारी नहीं थी, कहता है, अगर कमान चाहती थी कि ईरान पर हमला करे तो ज़रूरी था कि हमला करने वाली इकाइयों को सटीक जानकारी हो, जबकि संभावित प्रतिरोध के बारे में जो सूचनाएं थी वो सही नहीं थी।
اسلامی گڑتنتر ایران پر حملے کے سمے عراق کے باسی شاسن کی سینک کشمتا، ایران کی کرانتیکاری جنتا کے پرتیرودھ، ایران کی بھوگولک استھتی، وشال کھیترفل اور انیہ پراکرتک رکاوٹوں کے مد نظر اس کے لکش سے میل نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے دشمن کی وار مشین جنگ کے آرمبھک دنوں میں وشال خوزستان پرانت میں تتر بتر ہو گئی، جس کی وجہ سے پربھاوی حملہ کرنے کا افسر اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ عراق کے باسی شاسن کی سینا، جس کی فورسز کیندرت نہیں ہو پا رہی تھیں اور اسے اترکت فورس کی کمی کا سامنا تھا، دکشنی مورچے کو مضبوط نہیں کر سکی اور اس کی تیسری بریگیڈ بہمن شیر ندی کو پار نہ کر سکی۔ عراقی فورسز کو تتر بتر ہونے، سشستر بل کی کمی اور ویاپک مورچوں پر پرتیرودھ نے اسے پربھاوی پرگتی کرنے سے روک دیا۔ اس طرح عراقی فورسز رکشاتمک مدرا میں آ کر رکشاتمک مورچے بنانے پر مجبور ہو گئیں۔ یہی وجہ تھی کہ صدام نے اسلامی گڑتنتر ایران پر حملے کے ایک ہفتے بعد 29 ستمبر 1980 کو جنگ کی استھتی کی سمیکشا کے بعد اعلان کیا، عراق نے کھیتری لکش حاصل کر لیا ہے اور وہ دشمنی چھوڑ کر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ سینی ٹیکہ کاروں نے جنگ شروع ہونے کے ایک ہفتے کے بعد جو سمیکشائیں پیش کیں، وہ اسلامی گڑتنتر پر حملے میں عراق کی رڑنیتک پراجے کی سوچک تھیں۔ حالانکہ عراقی فورسز نے زیادہ تر مورچوں پر کچھ سفلتائیں حاصل کی تھیں، لیکن ان کی رفتار بہت دھیمی تھی۔ صدام کی اور سے ایک پکشی روپ سے جنگ بندی کا اعلان اسی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس بارے میں عراقی سینا کے کمانڈر کا کہنا ہے، صدام نے 28 ستمبر 1980 کو جس سمے سنگھرش ورام کا نویدن کیا، اس سمے وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ عراقی سینا میں کارروائی کرنے کی کشمتا نہیں ہے۔
اخبار دا فائنینشیل ٹائمز نے 18 اکتوبر 1980 کو عراقی تاناشاہ کے سنگھرش ورام کے اعلان کے بارے میں لکھا تھا، ایران عراق جنگ ٹیکٹک اور رڑنیتک دونوں ہی نظر سے بند گلی میں پہنچ گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ عراق ہر دیش کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تاکہ دونوں لڑنے والے پکشوں کے بیچ سنگھرش ورام کا مدھیستھ بننے کے لیے کوئی دیش تیار ہو جائے۔ جرمن پترکہ سپیگل عراق کی ہار کے بارے میں لکھتی ہے، جنگ جس طرح صدام کو اپیکشا تھی نہ تو ایرانی شاسن کے پتن کی وجہ بنی اور نہ ہی ایران کے خلاف بغداد کا سمرتھن کرنے کے لیے خوزستان کے عربوں نے بغاوت کی۔ عراقی فورسز مہینوں سے سیماورتی کھیتروں میں لکشہین کارروائی میں ویست ہیں، عراقیوں کے پاس صحیح یوجنا نہ ہونے کی وجہ سے ایرانیوں کو ضروری سمے مل گیا کہ وہ کرانتی کے سمے کے است ویست حالات کو اپنے نینترن میں لے کر مورچوں کے لیے ضروری رسد و کمک بھیجیں۔